पहले बुरा नहीं होता, उसका जब हम मिसयूज करने लगते हैं तो वो संस्कार बुरा होता है। मेरे ख्याल से तो एक जैसे किसी को किसी चीज के नेचर होता है, किसी का कि जो ठान ली तो वो फिर करके रहे, ये उसका नेचर। तो बुरी बुरे उसमें भी हो सकता है और अच्छे उसमें भी हो सकता है, दोनों जगह हो सकता है। तो अगर ऐसा हमारा नेचर है तो ये हमारी बुराई नहीं है, इसको हम अपनी योग्यता मान करके कहीं अच्छी जगह लगा दें तो वही। जैसे हमको किसी चीज़ की लत है, किसी को चाय पीने की लत है तो वो चाय पी ले, किसी को सिगरेट पीने की लत है तो सिगरेट पी ले। अब हम उस व्यसन को अपना विद्या में कन्वर्ट करें, हमको पढ़ने का व्यसन, हमको अच्छी बात करने का व्यसन, हमको व्यर्थ के कामों का जो के लिए हम जो एडिक्ट थे उसको हम चेंज करके और अच्छे कामों में, तो ये हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये जो आप कह रहे हैं बाद में कृपा बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी, तो इसमें मेरा कुछ भी हाथ नहीं है, इसमें सब आपका है। आप जैसा चाहेंगे वैसा है, आपको मेरे द्वारा जो प्राप्त होना उसमें मैं बाधक नहीं बनू। ये मेरी अपनी तरफ से मैं क्या ले सकता हूँ, तो मेरी अपनी तरफ से तो मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक विचार है मेरे पास, वो जब जो चाहेगा उसकी तो। और फिर आज आपका जो दिन है, आज तो बहुत मिला जुला दिन है, मुझे बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ, बहुत सारी घटनाएं पुरानी भी हैं, आज की वर्तमान की भी हैं, आपके पास भी बहुत सारी पुरानी घटनाएं हैं। अब सवाल ये है कि क्या उन पुरानी घटनाओं से हम कोई शिक्षा ले सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि उन पुरानी घटनाओं को लेकर के हम बैठ करके या कि वर्तमान की घटनाओं को लेकर के अपना समय वेस्ट करें, इससे बेहतर है कि हम पुरानी घटनाओं से या कि वर्तमान में घटित हुई घटना से हम कोई संदेश दें ताकि वो हमारे जीवन भर सहारा है। तो हर घटना हमें, हर घटना कोई ना कोई संदेश देते जाती है, अच्छी घटना हो चाहे बुरी घटना भी, बुरी घटना ये संदेश देती है कि इस तरह से जो जैसे कोई बुरी घटना ये कि जो हमारे बीच था आज वो नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति मरता नहीं है, वो व्यक्ति की देह मरती है। जब रामकृष्ण के मरण उनका आने को था रामकृष्ण का, तो शारदा थोड़ी सी व्यथित सी दिखी रामकृष्ण, तो उन्होंने कहा कि सुनो मरण तो निश्चित है, और अगर ये तुम सोचती हो कि मैं मर जाऊंगा तो जी भर के रो रहा, और अगर तुम ये सोचती हो कि मेरी देह मरेगी मैं तो फिर भी नहीं मरूंगा, तो फिर एक भी आंसू नहीं मिलेगा। ये रामकृष्ण का शारदा को समझाता है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो ठीक है रोना, जी भर कर भी रोना ताकि सब निकल जाए, लेकिन अगर ये सोचती हो कि मैं तो नहीं मरूंगा मेरी देह मरेगी तो फिर आंसू गिराऊंगा, तो फिर भी कहीं भी रहूंगा। मेरे अंदर जो गुण थे वो हमेशा हर एक के अंदर होते हैं, शाश्वत होते हैं, क्या उन गुणों को तुम अपने भीतर प्रकट करके मुझे जीवित रख सकते हो, तो बहुत बड़ी चीज हो गई। उन जो गुण व्यक्ति के थे अच्छे, उन गुणों को अपने जीवन भीतर जीवित रखें तो हमने उस व्यक्ति को जीवित रखा, हमने उसको बहुत बड़ी लाइफ दी है, अपनी पूरी लाइफ दे दी हमने उसको। जितने जीवन जितने वर्षों तक हम रहेंगे उतने वर्ष उसके विचार हमारे भीतर जीवित रहेंगे, जो व्यक्ति हमारे माध्यम से जीवित रहेगा। लोग मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि आखिरी समय जो है उसने कहा कि मेरा जीवन भी इसको दे दें और वो जीवित हो गया और ये व्यक्ति समाप्त हो गया। ये क्या चीज़ है, इसको प्रतीक रूप में ले लें कि हमने अपना जीवन अब अपने लिए नहीं, जो सामने वाले ने चाहा था उसके लिए पूरा समर्पित कर दिया, उसने जैसा जैसा चाहा था, अब मैं अपने शेष जीवन से वही सब करेंगे, तो इसका मतलब हो गया कि अब हम नहीं जिएंगे, वो मेरे भीतर जिएगा। तो बहुत छोटी चीज नहीं है, तो बहुत अच्छी है, देना आसान है लेकिन करना बहुत कठिन है। तो ऐसा किया पूरा जो आपने जो चाहा था। मार्गों के क्षण हैं, अग्नि अवसादों के क्षण हैं, डजनी की सोनी घड़ियों को किन किन से आवाज करूँ मैं, क्या भूलूँ क्या याद करूँ मैं। याद सुखों की आंसू लाती, दुख की दिल भारी कर जाती। याद सुखों की आंसू लाती, दुख की दिल भारी कर जाती। दोष किसे हूँ जब अपने से अपने दिन बर्बाद करूँ मैं, क्या भूलूँ क्या याद करूँ मैं। दोनों करके पछता, दोनों करके पछताता हूँ, सोच नहीं पर मैं पाता हूँ, सुधियों के बंधन से कैसे अपने को आजाद करूँ, क्या भूलूँ क्या याद करूँ। ये बच्चन है, एक और ढूंढ रहा था। मत कर धीमा गीत, अभी तो मंजिल दूर बहुत है। मत कर धीमा गीत, अभी तो मंजिल दूर बहुत है। पीकर स्वर का नेह, सभी का हृदय सदय हो जाता। पीकर स्वर का नेह, सभी का हृदय सदय हो जाता। रागों के मेले में नम का सूनापन खो जाता। मत रख पूजा थाल, अभी तो धूप कपूर बहुत है। मत रख पूजा थाल, अभी तो धूप कपूर बहुत है। मत कर धीमा गीत, अभी तो मंजिल दूर बहुत है। ध्वनि अपना इतिहास सदा ही प्रतिध्वनि से लिखवाती, ध्वनि अपना इतिहास सदा ही प्रतिध्वनि से लिखवाती। चेतन का संगीत बावरी जड़ता ही दोहरा, चेतन का संगीत बावरी जड़ता ही दोहराती। मत कर क्षण से द्रोह, एक क्षण भी द्रोह मत कर, मत कर क्षण से द्रोह। समय का निर्णय क्रूर बहुत है। मत कर धीमा गीत, मत कर धीमा गीत।
द्रोह क्या
द्रोह, मतलब किसी भी क्षण से लड़ो मत, क्योंकि किसी भी क्षण कुछ भी घटित हो सकता है। ये समय बहुत क्रूर है, समय का निर्णय क्रूर बहुत है। मत कर धीमा गीत, अभी तो मन की दूर। दुष्यंत को देखिए, फिर थोड़ा सा के बारे में। जिंदगी ने कर लिया स्वीकार, अब तो पथ यही है। जिंदगी ने कर लिया स्वीकार, अब तो पथ यही है। अब उपनते ज्वार का आवेग धीमा हो जाए। एक हल्का सा धुंधल का था कहीं कम हो जाए। एक शिला पिघले न पिघले, ये शिला पिघले न पिघले, रास्ता नम हो चला है। क्यों करूं आकाश की मनहार, क्यों करूं आकाश की मनहार। अब तो पथ यही है, कर लिया स्वीकार जिंदगी ने, अब तो पथ यही है। क्या भरोसा कांच का घट है किसी दिन फूट जाए, क्या भरोसा कांच का घट है किसी दिन फूट जाए। एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए, एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए। एक समझौता हुआ था रोशनी से छूट जाए, एक समझौता हुआ था रोशनी से छूट जाए। आज हर नक्षत्र है अनुदार पर पत्ते, आज हर नक्षत्र है अनुदार पर पत्ते ही है। जिंदगी ने कर लिया स्वीकार, अब तो पत्ते ही है। ये लड़ाई जो कि मैंने अपने आप से लड़ी, ये लड़ाई जो कि अपने आप से मैंने लड़ी है। ये घुटन ये वेदना केवल किताबों में पड़ी है, ये घुटन ये वेदना केवल किताबों में पड़ी है। ये पहाड़ी पांव क्या चलते इरादों में चलते, ये पहाड़ी पांव क्या चलते इरादों में चलती है। कल दरीचे ही बनेंगे द्वार, खिड़की द्वार बन जाएगी मैं निकल जाऊँ। कल दरीचे ही बनेंगे द्वार, अब तो पथ यही है। जिंदगी ने कर लिया स्वीकार, अब तो पथ यही। इतना अधिक जो है हमारा जिस हम रास्ते पर चल रहे हैं, जो हमने जिससे दिया है उसका चुकाना होता है। तो चुकाते ऐसे ही हैं कि हम सिर्फ तो उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो सब चुकता है। और दूसरा ये कि परिवार में रह करके भी आसानी से किया जा सकता है। मुझे नहीं नहीं कर सकता व्यक्ति जितना उससे बनता हो उतना कर सकता, क्योंकि आप अपनी लाइबिलिटी थी। हम एक व्यवहार पर कोई लाइबिलिटी नहीं है तब तो हम छोड़ भी सकते, लेकिन जब हमने अपने आप लाइबिलिटी ली है, अपना दायित्व हमने स्वीकार किया है, तो अब उस दायित्व को पूरा करना हमारा पास। तो ऐसा मान करके व्यक्ति कर सकता है कि ये मेरा दायित्व है, मैं पूरा करता हूँ, मेरा अपना इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। तो ऐसा करके जीवन अगर मोक्ष मार्ग में भी ऐसे ही करना पड़ता है। जब हम मोक्ष मार्ग स्वीकार कर लेते हैं तो एक दायित्व हमारे पास हमारे ऊपर आ कि हमें अपने पूर्वाचार्यों का दायित्व है कि इस मार्ग को ठीक ठीक आगे बढ़ाना और दूसरे को सौंप करके हम चले जाना जाना। खुद भी अपना कल्याण करना और जो भी आस पास है उसको मोक्ष मार्ग सौंपना, तो ये हमारा दायित्व है। तो उस दायित्व को हो जाए जानने के उपाय भूत अधिकार को अनुयोग है। पदार्थ को जानने के उपाय भूत मतलब पदार्थ को जानने का उपाय है, एक तरह से अनुयोग। पदार्थ को जानने के उपाय भूत अधिकार को अनुयोग कहते हैं। अनंत भगवान का उपदेश चार अनुयोग रूप है। अनंत भगवान का उपदेश चार अनुयोग रूप है। चारों अनुयोगों का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक जीव को उसकी क्षमता के अनुसार पाप से बचाकर जीतराज घर में लगाने का है। चारों अनुयोगों का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक जीव को उसकी क्षमता के अनुसार पाप से बचाकर वीतराग धर्म में लगाने का है। पहला नंबर वन प्रथम अनुयोग, किसी महापुरुष का चरित्र, किसी महापुरुष का चरित्र या शलाका पुरुषों का वर्णन करने रूप पुराण। महापुरुष का तो होता चरित्र और शलाका पुरुषों के का वर्णन करने रूप पुराण, आख्यान या कथा। इन सभी के माध्यम से, चरित्र, पुराण, आख्यान और कथा, इन सभी के माध्यम से जिसमें धर्म को प्रारूपित किया गया हो वो प्रथम अनुयोग, जिसमें धर्म को प्रारूपित किया गया हो वो प्रथम अनुयोग। जैसे महापुराण, पद्म पुराण, सैनिक चरित्र आदि ग्रंथ प्रथम अनुयोग के प्रमुख ग्रंथ। जैसे महापुराण,
पुराण, शैनिक पुराण आदि ग्रंथ ब्रह्मानी युग के प्रमुख ग्रंथ। हालांकि इसमें और भी सब बातें भी हैं, लेकिन मुख्य का रत्न मतलब करना नहीं। जिसमें कर्म सिद्धांत लोक अलोक का वर्णन, कर्म सिद्धांत लोक अलोक का वर्णन, काल परिवर्तन और चारों गतियों का वर्णन और चारों गतियों के वर्णन, जिसमें कर्म सिद्धांत लोक अलोक का वर्णन और काल परिवर्तन और चारों गतियों के वर्णन के माध्यम से धर्म का उपदेश दिया गया हो, वो करना नहीं होता। करण के लिए करण ब्रैकेट में लिखा करण इज इक्वल टू करण के मायने जीव के परिणाम, दूसरा गण करण के दो अर्थ, नंबर वन जीव के परिणाम, नंबर टू गण ब्रैकेट में इसको करने की गण। करण मतलब गणित भी होता और करण मतलब भाव भी होता, परिणाम भी होता, तो दोनों होते हैं। करना नहीं लोग मतलब जिसमें गणित का भी कैलकुलेशन दिया हो, सब सूर्य चंद्रमा की दुनिया गुणा भाग भी दिया है, मैथमेटिकल नाप तोल सब दिया है और उसके साथ कर्म सिद्धांत भी दिया है। गोमट सार तिल्लोई पंडित, गोमट सार, गोमट सार को ही कर्मकांड जीवकांड ऐसे दो भागों में डिवाइड किया है। तो गोमट सार के बैठक में लिख लें कर्मकांड जीवकांड, ताकि ये क्लियर हो जाए कि गोमट सार कोई अलग चीज नहीं है। गोमट जो है वो चामुंडराय के बचपन का नाम था, तो उन्हीं के आधार पर जो है गोमट स्वामी गोमटेश बाहुबली की मूर्ति फेमस हुई चामुंडराय के बचपन के नाम से। और ये क्योंकि चामुंडराय के लिए नैमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने चामुंडराय को पढ़ाने के लिए ये लिखा था, इसलिए इसका नाम ही हो गया गोमट सार। चामुंडराय को पढ़ाने के लिए गोमट का सार मतलब ऐसा करते हैं। इसमें दो है जीवकांड और कर्मकांड। तिलोई पंडित इसको त्रिलोक प्रज्ञप्ति है, ताकत में तिलोई पंडित, तिलोई पंडित और त्रिलोक सार। आदि प्रमुख रूप से कर्णानी के हैं। त्रिलोक प्रज्ञप्ति को ही त्रिलोक पंडित बोलते हैं प्राकृत में। चरणानि योग मैंने क्रम ऐसे ही लिखवाया है कि पढ़ना कैसे चाहिए, फिर पानी में पढ़ना चाहिए, फिर करणानि योग, फिर अब चरणानि योग। क्योंकि जब तक व्यक्ति को अपने परिणामों का लाभ नहीं मालूम तब तक वो अपनी क्रिया को ठीक नहीं कर पाता है। जैसे मालूम पड़ जाता है कि मेरे इस परिणाम से मेरा ये लाभ होने वाला, मेरे इस परिणाम से मेरी ये हानि होने वाला, तो उस हिसाब से वो आचरण करे चरणानि योग। इसमें गृहस्थ और मुनिजनों के योग आचरण का उपदेश देकर धर्म को प्रवर्तित किया गया है। चरणानि योग के मायने क्या हुआ, इसमें गृहस्थ और मुनिजनों के योग आचरण का उपदेश देकर धर्म को प्रवर्तित किया गया है। मूलाचार और रत्नवंश का अपकाचार आदि प्रमुख रूप से चरणानि योग के धर्म हैं। मूलाचार रत्नकांडक शाकाचार आदि प्रमुख रूप से चरणानि योग के धर्म हैं। मैं शॉर्ट में लिख लू नाम द्रव्यानि योग नंबर चार। पाप पुण्य देखो, पुण्य पाप देखो, पुण्य अच्छा है पहले देखो, पुण्य पाप, पाप पुण्य का पुण्य पाप, बंध मोक्ष लेकिन कहना पड़ेगा बंध और मोक्ष, तो पहले ही बंध लेना है। बंध मोक्ष, चेतन और अचेतन, समस्त सात द्रव्यों के स्वरूप का आलंबन लेकर पुण्य पाप, बंध मोक्ष और चेतन अचेतन, समस्त सात तत्वों के स्वरूप का आलंबन लेकर धर्म का उपदेश दिया गया हो, जिसमें जिसमें पुण्य पाप, बंध मोक्ष, चेतन और अचेतन, समस्त सात तत्वों के स्वरूप का आलंबन लेकर धर्म का उपदेश दिया गया हो, वो द्रव्य है। अध्यात्म और भावना ग्रंथ, जैसे अध्यात्म और भावना ग्रंथ, जैसे षटखंड आगम, समय सार जी, षटखंड आगम जी की लिखे या श्री षटखंड आगम लिखा जाता है, वैसे अध्यात्म और भावना ग्रंथ जैसे श्री षटखंड आगम, समय सार जी, प्रवचन सार जी, द्वादश अनुपेक्षा आदि ग्रंथ प्रमुख रूप से द्रव्यान योग के ग्रंथ हैं। और जल्दी बोले नहीं देख रहे थे कि भाई इतने जल्दी इतने धीरे धीरे बोल रहे हैं। अध्यात्म और भावना ग्रंथ जैसे श्री षटखंड आगम, समय सार जी, प्रवचन सार जी, द्वादश अनुपेक्षा, बारह अनुपेक्षा बोलते हैं इसको, अलग से ग्रंथ है ये कुनकुन स्वामी का, इसको कोई नहीं पढ़ता क्योंकि बारह माना पढ़ेंगे तो व्यक्ति ही हो जाएगा। तो द्वादश अनुपेक्षा आदि ग्रंथ प्रमुख रूप से द्रव्यान योग के ग्रंथ हैं, ये जो है आपके इस तरह से जैन धर्म में ग्रंथों को डिवाइडेशन किया हो गया। चार मान में स्वाध्याय के काल, समय के समय में स्वाध्याय नहीं
करना
चाहिए, बस जो तो जो कोई समय करे कोई मान लो समय का समय सामयिक के समय को छोड़ के बाकी बस। और प्रथम नियोग तो चाहे जब पढ़ो, अकेले श्रद्धा सिद्धांत ग्रंथों के लिए नियम है, और अपन इस वाले टाइम में भावना ग्रंथ को भी पढ़ लेंगे, कठिन चर्चा नहीं करेंगे, ये समय का काल है। सूर्य सूर्य उदय के तीन घड़ी पहले से लेके सूर्य उदय के तीन घड़ी बाद तक सिद्धांत ग्रंथ नहीं पढ़ना, बस इतना। अब सिद्धांत ग्रंथ में क्या कहा आएगा तो लगा नहीं, ये नहीं पढ़ना। अपने ऐसे ग्रंथ तो ऐसे है नहीं, कोई पढ़ता हो सिद्धांत ग्रंथ कौन पढ़ता है, इसकी इतनी शक्ति है। सत्कार सूत्र का पाठ करने के लिए अब कई लोग अष्टमी चतुर्दशी को मना करते हैं, अष्टमी चतुर्दशी को मना करते हैं सत्कार सूत्र के पाठ में।
अभी भगवान
कोई बात तुम ही मान लो, वही तो कह रहे हैं। कई सिद्धांत ग्रंथों के लिए लिखा है, बड़े बड़े जो सिद्धांत ये समझ में नहीं आई तो ऐसा लगने लगे उस समय कि कैसा लिखते हैं ग्रंथ, हम इतना कठिन टाइम को लिखते हैं। कृत्य की अभिनय हो गई भगवान की वाणी की, तुम मत करो भैया, तुम्हारे रथवाणी में पढ़ लो, किस्सा कहानी जैसा पढ़ लो, या कि बारह भावना पढ़ लो, या मेरी भावना पढ़ लो, जो सरल रहे।
इसके लिए निषेध
कोई निषेध नहीं, अब क्या करेंगे, होगा 24 घंटे नमोकार मंत्र करने के लिए 24 घंटे, कोई भी भगवान की भक्ति को 24 घंटे, सामायिक के समय में भी भगवान की भक्ति, किसी को कुछ नहीं आता, मान लो सामायिक नहीं आता तो वो क्या करेगा, बैठ जाएगा शांति से, पहले नमस्कार पढ़ लो 20 मिनट में कर देंगे, फिर उसके बाद एक पाठ पढ़ लेंगे 15-20 मिनट, 48 मिनट पूरे करने पढ़ लो, 2-4 प्रकार के पाठ मन लगा रहे हैं उसमें, जैसे नमोकार में जिसका मन लगा नमोकार पढ़ेगा, नहीं तो नमोकार तो पढ़ रहे हो बड़ा थोड़ा सो गए, ऐसी सामायिक से तो अच्छा है कि बांस के पढ़ो कसी शांति से, जिसमें कि वो अपना अपना नहीं है किसी की क्षमता, मान लो मन नहीं लगता है तो पढ़ेगा, किसी नहीं अपन लोग समझ नहीं पाए उस चीज़ को, सिद्धांत ग्रंथ नहीं पढ़ना, उनका विवेक करते हैं लगभग, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें मानी गई, लगता है कब कब अश्विन चतुर्दशी को अपन ने पढ़ा था, तो उसके लिए उतना विशेष नहीं मानते, विशेष सत्खंड आगम विशेष है, उसको नहीं पढ़ना, वो कठिन है। कब सत्खंड आगम इत्यादि कोई बोलेगा तो उसको भी नहीं, सूत्र भी पढ़ भी सकते हैं, अश्विन चतुर्दशी निषेध नहीं
है,
किसको सत्खंड आगम विशेष रूप से सिद्धांत ग्रंथ, उसमें बहुत डिटेल है, मतलब तो ये कहिएगा कि जैन जैन दर्शन का सबसे बड़ा ग्रंथ माना गया, वो पूज्य ग्रंथ है, हम भी जो है उसको 100-100 फीट की दूरी तक, मतलब शंका और शोक इत्यादि का स्थान ना हो 100-100 फीट तक, तब उस ग्रंथ को रखना और पठन पाठन शुरू करना, अष्टमी चतुर्दशी को नहीं करना, पूरी शांतिपूर्वक है करना, उसके बीच में और कोई अगर ऐसे हाथ लग गया तो हाथ धोकर के फिर स्पर्श करना, बहुत शुद्धि उसकी रखी जाती है, उसमें हम लोग नहीं पढ़ते हैं, शठखंड 40 वर्ली है, 40 वर्ली कृष्ण भूत बलि आ जाए कुनकुन स्वामी के पहले, कुनकुन स्वामी का बहुत नाम है क्योंकि वो फेमस हुए, लेकिन ये उनके पहले के आचार्य बड़े आ जाए, सबसे पहला ग्रंथ है लिपिवत, उसी में तो नमोकार लिखा हुआ सबसे पहले, उसके पहले नमोकार लिखित रूप में नहीं था, उसका मंगला चरण नमोवरियम था, उसमें एक एक सूत्र की जैसे नमो जिनानम, नमो भी जिनानम, नमो परमो भी जिनानम, अब एक एक सूत्र इस तरह बने हुए, उन सूत्रों की व्याख्या एक अकेली कर्म फिलोसफी के लिए, और कर्म फिलोसफी में भी सिर्फ मोहिनी कर्म, मोहिनी कर्म के डिस्क्राइब करने के 8 वर्ल्ड, 8 वर्ल्ड में मोहिनी कर्म का डिस्क्रिप्शन है से बताइए, तो बहुत बड़े वो सिद्धांत ग्रंथ माना जाए, वो वाकई में माने कठिन हो तो हर एक के समझ में आने वाली चीज, इसलिए उसको उसको पढ़ने का विशेष, अभी सिद्धांत ग्रंथ में वही माना जाता है, कुछ लोग तत्पर सूत्र को भी सिद्धांत ग्रंथ में शामिल करते हैं, पर वो इतनी प्रचलित चीज हो गई है कि पाठ करने में उसके कहीं कोई बुद्धि नहीं रखना, सिद्धांत ग्रंथ काल में ये पूरा साइकिल पहले से छठे काल, सर नहीं आ सकता
क्योंकि बैठिंग में कुछ देर कर तो संडे है एक नहीं संडे को अगर कोई यहाँ वो नहीं रखेंगे खाने पीने का तो फिर दिन से फिर तो शांति रहे तो बिल्कुल अपार
पत्ता मत चलते खट्टे पड़ सकते कि एक जगह बैठ के पड़े
जैसे परोसाए कोई दिक्कत नहीं अगर अपने पाठ करने का नियम लिया है तो फिर शांति से बैठ के करें और ऐसे भक्ति पढ़ना है तो अब हमने कल 10 तो पद पढ़े थे फिर 14 पढ़े थे तो अब क्या करेंगे आप पाप लगेगा नहीं चाहे हम एक पद पढ़ेंगे दो पढ़ चाहे 48 पद हमें थोड़ी ताले वाले दौड़ना है भक्ति करना जो हमें बहुत जो हमें कुछ चाहिए होगा ताले तोड़ना होंगे तो हमें पढ़ेंगे उस हिसाब से पढ़ेंगे हाँ फिर तो
जगह बैठ के पड़े
हैं किचन
में
करते
बना
उसमें कहीं कोई वो नहीं है मन की शुद्धि अपनी रहे शरीर की थोड़ी जितनी शुद्धि है शक है उतनी शुद्धि अब ऐसे तो अपवित्र है शरीर से अपवित्र कोई चीज नहीं अब उसकी का शुद्धि करो वो जितनी हो सकती है नहीं वो उसका उद्देश्य मुझे लगता है जैसे अष्टमी चतुर्दशी को पर्व है पर्व के दिन व्रत नियम संयम करते हैं तो उसमें अपना मन पूरा लगा रहेगा उस दिन अगर पढ़ोगे तो कोई ज्यादा परेशानी तो हो इसलिए सरल सहज जिसमें वैराग हो वैराग वाली चीज पढ़ना उस दिन ये नहीं लेके बैठ जाना दिमाग लगाने वाला माथा बच्ची वाला तो और ज्यादा बढ़ इसलिए मना किया मुझे तो लॉजिकल अब जैसे सूर्य ग्रहण का तो सूर्य ग्रहण के समय नहीं पढ़ना राजा हमारे जावे तो नहीं पढ़ना तो इसका सबका लॉजिक क्या है सूर्य ग्रहण होगा तो ढक जाएगा सब बेकार हो जाएगा तो क्या करोगे तुम पढ़ोगे इसलिए लॉजिकल है भाई उसके पहले अब उनने बना लिया सूर्य ग्रहण मतलब पाप लगता होगा पढ़ना नहीं अंधेरा हो जाता है इसलिए राजा मर जाएगा तो पहले राजा लोग होते थे राजा मर गया तो हो सकता सेना बगावत कर देवे या दूसरा राजा आक्रमण कर देवे तो अपना स्वाध्याय वाध्याय मत करना राजा मर मरेगा अब उसका अर्थ ऐसा दे आ जाए तो सब फोटो ले रहे हैं तुम्हारे